जयधव लांग, पुस्तक 12वीं, लेक्चर नंबर 20, 42 कहाँ से डाला है? 20 नंबर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम सुशात्मने नमः। नमो अरिहंतां। नमो सिद्धानं। नमो आयरियानं। नमो वज्रायानं। नमो लोये सौवसाहूनं। प्रणमहजिनवरवसहं। गणहरवसहं। सहेव गुणहरवसहं। दुसह परिसह विसहं। जैवसहं धम्मसुत्तपाणरवसहं। इयपणिन्यजिनाहे गणनाहे तयचेव मुनिनाहे। सम्मत्तशुद्धिहे उं ओच्छं सम्मत्तमह्यारम्। यह श्री वीरसेन आचार्य ऋषि जयधोला टीका है, जो कषाय पौर तथा चुनि सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टार तथा ऋषि शुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 12वीं पुस्तक में अभी हम सम्यक्त्व अनुयोग द्वार देख रहे हैं। पुरुष संख्या है 229। यहाँ ये बात चल रही थी कि कौन सी प्रकृति विच्छिन्न रूप हो जाती है, तब दर्शन मोह के सन्मुख जो उत्तम के सन्मुख जीव है। यहाँ तो लिखा है कि अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में, परंतु ये बातें उसके पहले भी लागू होती है, पश्चात भी लागू होती है, क्योंकि इसको मध्य दीपक रूप से स्वीकार किया है यहाँ पर। तो कौन कौन से प्रकृतियों की बंध विच्छिन्न होती है, तो ये पूरी जो 34 बंधापसन स्थान है वो सबको बताएगा। स्थिति याद है उसमें बंधापकरण, पहले तो चार आयु को बताएंगे, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु, देवायु, फिर नरक गति नरक गत्यानुकूल भी लेना, फिर उसके बाद अपर्याप्तों की लिस्ट, यानी सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण, उसके बाद हाँ सूक्ष्म अपर्याप्त प्रत्येक ये दोगे, उसके बाद बादर अपर्याप्त साधारण और बादर अपर्याप्त प्रत्येक, उसके बाद बिंदी अपर्याप्त, तीली अपर्याप्त, चतुर्लिंगी अपर्याप्त, असंगी अपर्याप्त, संगी अपर्याप्त, ये हम आए 14 तक। उसके बाद पर्याप्तों के लिए सूक्ष्म पर्याप्त साधारण, सूक्ष्म पर्याप्त प्रत्येक, बादर पर्याप्त साधारण, बादर पर्याप्त प्रत्येक। अब यहाँ तक एक इंद्रिय के पूर्ण हो जाते, इसलिए एक इंद्रिय स्थावर और आत्म भी यहीं पर ले लें, ये 18 हो गए। उसके बाद इंद्रिय पर्याप्त, तीन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिंद्रिय पर्याप्त और असंगी पर्याप्त, ये 22 हो गए। 223 पर ये बात हमने पढ़ी है एक्चुअली। उसके बाद तीरंज गति, तीरंज गत्यानुपूरी उद्योग 23 नंबर पर, 24 पर मात्र नीच गोत्र, 25 पर अप्रशस्त व्याय की दुर्भग दुष्वर और अनादे, 26 में अब यहाँ एक एक संस्थान, हाँ कुंडक संस्थान और संप्राप्त रूपाटिका सहन, 27 में नपुसक वेद, 28 में वामन संस्थान की लिप सहन, 29 पे कुब्जक संस्थान अर्धनारायण सहन, 30 पे त्रिवेद, 21 पे स्वाति संस्थान नाराज सहन, 32 पे नगरोध परिमंडल और वचन नाराज, 33 पर मनुष्य गति, औदारिक शरीर, औदारिक शरीर अंगोपांग वजन सब सहन और मनुष्य गति प्राज्ञान, ये 33 पर हो गया। और 34 में जो हम छठे गुणस्थान में देखते हैं, असाता वेदनी अरति शोक अस्थिर अशुभ और अयशस्य, हम इस क्रम से हमने यूज किया था अस्थिर अशुभ अशाता वेदनीय अस्थिर की अरति और शोक, वो पूरा ग्रुप जहाँ जहाँ एक से अनेक प्रकृतियाँ आई है वहाँ वो समुदाय रूप से यानी परस्पर संयुक्त ऐसा मान लिया था। जैसे पर्याप्त नाम कर्म हमने बहुत बार देखा, फिर भी पर्याप्त नाम कर्म की निश्चित से नहीं हुई है क्योंकि संगी पंचेंद्रिय और पर्याप्त ये बंद रहा है श्रोत, ये तो हमने देखा। उसके बाद आगे आते हैं 225 पर, ये जो हमने देखा है मनुष्य किरिंचन की अपेक्षा ये बताया। अब आदेश में किस चीज का विच्छेद नहीं होता ऐसा पूछा गया था, तो चारों गतियों में ज्ञानावरण प्रकृति के बंध का विच्छेद नहीं होता है, दर्शनावरण पर भी नहीं होता है, वेदनीय में असाते की बंध यह विच्छेद की जो कहा है वो बंधापसरण के अर्थ में लेना, क्योंकि असाता यहाँ कुछ काल के लिए बंधना रुपये हमने तो देखा सफे तक बंधी है। अभी उत्तम समित्व के काल वाली जो है अभिप्राय लग्जी से लेकर उत्तम समित्व पूरा होने तक वो नहीं बने, बाद में तो नहीं, बाद में साइक वाला हो या वेदक वाला भी होगा तो उसके तो बंधेगी। मोहनी में ऐसा ही देखा था त्रिवेद नहीं बन रहा है, नपुंसक वेद नहीं बन रहा है, अरति शोक नहीं बन रहा है। अभी यहाँ के तो अर्थ नहीं बन रहे, बाद में वो भी बनेगा। यहाँ आयु कर्म कोई भी नहीं बन रहा, उसके बाद ये भी देखा था हमने सातवें नरक के लिए खास विशेषता देखी कि तीरियन की गति का अन्यत्र जो बंधे की स्थिति कही है वहाँ तो स्वभाव अंतिम समय तक वो बंधेगा, समय तो प्राप्त होने के पश्चात नहीं बंधेगी, जब तक समय दृष्टि है तब तक, ऐसी कुछ विशेषता हमने देखी। उसके बाद कहाँ कहाँ कितनी कितनी बनती है उसकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। अभी हम पृष्ठ संख्या 229 पर आ गए। पहले तो बंद की बात की थी, अब उदय की बात चली। देखो उदय की बात यहाँ से शुरू होती है 226 में अंतिम लाइन उदय की बात। देखो लास्ट वहाँ सूत्र में पढ़ेंगे कि पांच ज्ञानावरण, चार जाति नाम कर्म, चारों अनुपूर्वी, पांच दर्शनावरण, मैं क्या मैंने ज्ञानावरण कहा, पांच दर्शनावरण, चार जाति नाम कर्म, ये पांच दर्शनावरण में निद्रा लेंगे, चार जाति नाम कर्म, चारों अनुपूर्वी तथा आतप सावर सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण शरीर नाम कर्म, ये प्रकृतियाँ उदय से विच्छिन्न होती हैं। यानी इन जीवों के तो सम्यक्त्व प्राप्ति नहीं है, जिनके इनका उदय है उनके सम्यक्त्व नहीं होता। जैसे चतुरिंद्रिय असंगी तक तो सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता ही नहीं है, इसलिए ये उदय से विच्छिन्न क्यों कहा, जहाँ इनका उदय है वहाँ सम्यक्त्व नहीं, जिनके सम्यक्त्व उनके ये उदय नहीं है। पांच दर्शनावरण में तो निद्रा को लेना, यानी जागृत अवस्था में ही सम्यक्त्व का उसके पूर्व भूमिका का कार्य भी जागृत अवस्था में होगा। यानी यहाँ उदय की बात यहाँ से चली। फिर उसके बाद उन्होंने एक तो जनरल बात बताई उन्होंने, उसके पश्चात आदेश में बताना शुरू किया 227 पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ 69 नंबर का। आदेश से कहते हैं कि सभी गतियों में चारों गतियों में पांच ज्ञानावरण प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं है, दर्शनावरण की चार का उदय विच्छेद नहीं है, पांच का होता है कहा हम, चार का नहीं होता कह रहे। वेदनीय साता असाता इन दोनों प्रकृतियों का उदय विच्छेद नहीं, यानी किसी भी के उदय में वहाँ सम्यक्त्व की प्राप्ति है उसका कार्य चलेगा। मोनी की सब प्रकृतियों के विदय का विच्छेद नहीं है, किसी का भी यानी उदय तो सबका चल रहा है। यहाँ बंध में हमने दो वेद और अरति शोक का बंध रुक गया था कहा, यहाँ उदय तो किसी का भी हो सकता है। इतनी विशेषता भी जो जहाँ की विशेषता है, नरक में तो नपुंसक वेद का ही उदय होगा, स्त्री वेद पुरुष वेद का नहीं होगा, देवों में न पुरुष वेद का नहीं होगा, वो तो बात बताना। आयु भी किसी की भी, किसी भी आयु का उदय है तो यहाँ तो सम्यक तो प्राप्ति की योग्यता है, तो उदय चारों आयु का है, विच्छिति नहीं है के दिया। इतनी विशेषता अपने अपने जिस आयु का उदय है उसी का उदय चलेगा, अन्य तीन आयुओं का उदय नहीं होगा। उसके बाद हमने नाम कर्म की देखना शुरू किया, 228 पृष्ठ पर 70 नंबर का पॉइंट। नाम कर्म में नारकी के जिसका उदय होता है उसको कहेंगे उदय से विच्छिन्न नहीं होते। तो किस किस का उदय है? नरक गति है। देखो एक बात है, प्रायज्ञानपूर्वी नहीं लेना उदय, क्योंकि प्रायज्ञानपूर्वी का उदय कब होता है? विग्रह गति में, और उस समय तो औक्षणिक समय से प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए उसको उदय में नहीं लिया। और दूसरी विशेषता है कि जैसे बंध में हमने स्थिर या अस्थिर लेते हैं, यहाँ तो स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ दोनों लेना, क्योंकि वो ध्रुवोदयी प्रकृति किया। हाँ, हर समय एट ए टाइम दोनों का ही उदय रहता है, बंध में एक बंधेगी एट ए टाइम दोनों का ही उदय होता है, वो तो 13वें तक रहता है, स्थिर अस्थिर और शुभ अशुभ, ये दोनों का ही एट ए टाइम उदय चलता है। हमने देखा वो सात धातु अपने रूप से रहना और पर रूप से हो जाना, दोनों ही कार्य चलते रहे। तो नाम कर्म के देखेंगे हम, नरक गति, पंचेंद्रिय जाति, वैक्रिय शरीर, तेजस शरीर, कारमान शरीर, मुंडक संस्थान, वैक्रिय शरीर, अंगोपांगे, पूरा एक शब्द है ना, तो यहाँ दो मत गिनना। हम वैक्रिय अंगोपांगे कहते चलेगा। वर्ण चतुष्क, अग्रु लघु चतुष्क, अप्रशस्त विहार गति, त्रस चतुष्क, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, फिर दुर्भग, दुस्वर, अनादय, यशस्वी और निर्माण। ये उदय से विच्छिन्न नहीं है, नहीं उनका उदय होता है, शेष प्रकृतियों का उसके उदय नहीं पाया जाता, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। इसके साथ हमने जो नरक गति बांधने वाले के जो 28 बांधती है उसके साथ उसकी कंपेयर करके देखा था, उसमें से एक प्रायज्ञानपूर्वी का उदय नहीं है, परंतु स्थिर अस्थिर वाले दोनों दोनों जोड़ी का है, इसलिए वो बात घटित हो जाती है। तीर्यंचों में अभी इसमें से नारकी से तीर्यंचों में क्या विशेषता होगी? यहाँ वैकृत शरीर लिया, वहाँ उदारिक औदारिक अंगोपांग लेना, एक बात। यहाँ सहनन नहीं लिया था, वहाँ लेना है। नारकी में मात्र अप्रशस्त विहार गति ली थी, वहाँ दोनों लेना है। सहनन भी छह ले सकते हैं,
संस्थान भी
छह लेना, ये उसमें डिफरेंस था।
उद्योग की लेना,
उद्योग किसी के होगा किसी का नहीं होगा। और ऐसे आगे वाली जो जोड़िया है ना, सुभग या दुर्भग, सुस्वर अदुस्वर, आदे अनादे, यशस्वी, वो सब तो उसमें भले प्रकृतियों की संख्या एट ए टाइम उतनी रहेगी, इसके भंग बनेंगे, इसको भंग कहते हैं, कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं, यानी इतनी प्रकृतियों का उदय है, अन्य प्रकृतियों का उदय नहीं है तो कहेंगे उदय से विच्छिन्न है। देवगति में ऐसा देखा था नरक के समान, परंतु वहाँ ये शुभ प्रकृतियाँ लेनी, वहाँ उंडक संस्थान लेना तो यहाँ समस्त चतुर्थ संस्थान, वहाँ अप्रशस्त विहार गति लिया, यहाँ प्रशस्त विहार गति ले लेना, सुस्वर लेना, सुभग लेना, आदेय लेना, यशस्वी के लेना आदि, ये तो हमने पढ़ा। उसके बाद 229 पृष्ठ पर तो वहाँ कहते हैं कि नारकी और तीर्यंचों में नीच गोत्र का उदय होगा, उसके गोत्र को उदय से विच्छिन्न कहेगी वहाँ पर। मनुष्यों में नीच गोत्र भी हो सकता है, उच्च गोत्र भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, देवों में तो उच्च गोत्र रहेगा। और जो प्रकृति जहाँ उदय रूप है यानी उदय से अविच्छिन्न है, अब ये तो प्रकृतियों की बात थी, अब स्थिति के उदय की बात चल रही, तो स्थिति कितनी है वहाँ पर? तो अंत कोड़ा कोड़ी स्थिति है, तो उदय रूप स्थितियाँ कितनी हैं? तो हम तो कहते हैं ना वर्तमान एक समय की उदय रूप है, हाँ, परंतु उदीर्ण होकर ऊपर के सभी स्थितियों में से उदीर्ण होकर परमाणु उदय में आ सकते हैं, तो इसलिए उसको अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण कहेंगे, इतने स्थिति का उदय है ऐसा करना। ये यहाँ लिखे है 229 पृष्ठ पर 74 नंबर के पॉइंट में, एक लाइन हम पढ़ेंगे वहां से कि जहाँ जो प्रकृतियां जहां पर उदय से अविच्छिन्न है यानी उदय में है वहां उनकी अंत कोड़ाकोड़ी प्रमाण स्थिति उदय से अविच्छिन्न है यानी उदय रूप है। ये भाषा अटपटी है ना, तो हम कहेंगे एट ए टाइम इनका उदय कैसे होगा, तो उदीर्णा के द्वारा उदय होगा और शेष प्रकृति उनकी वो तो उनका उदय ही नहीं है, इसलिए उनके स्थिति का भी उदय नहीं है कहीं। यह स्थिति उदय विच्छिन्नता है। अब कहते जो अनुभाग उदय की बात करेंगे तो जो अप्रशस्त प्रकृतियां उदय से अविच्छिन्न है, उदय से अविच्छिन्न है उदय रूप है, उनका द्विस्थानी अनुभाग सत्व से अनंत गुणा हीन होकर उदय से अविच्छिन्न है यानी उदय में आता है। क्या कहा? वो हमने देखा था अप्रशस्त प्रकृति द्विस्थानी हो जाती है, सत्ता में द्विस्थानी है, उदय में आते हुए वो भी अनंत गुणा हीन होकर उदय में आते हैं। ये तो लक्षण है, क्योंकि विशुद्धि बढ़ रही है तो ये सभी अप्रशस्त कर्म जो है वो अनंत गुणाहीन होकर उदय में आते, प्रति समय अनंत गुणाहीन चलता है। शेष प्रकृतियों का अनुभाग उदय से विच्छिन्न है, क्योंकि जो उदय रूप नहीं है, जो प्रकृतियां उदय रूप नहीं है तो उसका अनुभाग भी उदय से विच्छिन्न है, यह अनुभाग विच्छिन्नता हो गई। अब प्रदेश के बारे में, जो प्रकृतियां उदय से अविच्छिन्न है उदय रूप है उन प्रकृतियों का अनुत्कृष्ट प्रदेश पिंड उदय से अविच्छिन्न है उदय में आता है, यानी उदय किस रूप से है, अनुत्कृष्ट रूप से। शेष प्रकृतियां प्रदेश पिंड की अपेक्षा उदय से विच्छिन्न है उदय रूप नहीं है, जो उदय रूप है उनका अनुत्कृष्ट प्रदेश उदय चल रहा है। ये अपनी भाषा में यही पर प्रकृति आदि की उदीर्णा की विच्छिन्नता और अविच्छिन्नता को भी इसी दिशा से जान लेना चाहिए। जो उदय रूप बताए उसी की उदीर्णा भी कहेंगे हम, उदीर्णा के लिए भी यही पूरा ही अप्लाई करना है जो हमने अभी पढ़ा है। इस प्रकार तीसरी गाथा के पूर्वार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। यहाँ तक तो हमने कल पढ़ा था, अब यहाँ से आगे पढ़ेंगे विशेषार्थ। यहाँ चूर्णी सूत्र में दर्शन मोह के उपशम के सन्मुख हुए जीव के निद्रादिक पांच का अनुदय बतलाया है, उसका कारण देते हुए टीका में बतलाया है कि ऐसा जीव नियम से जागृत होता है। किंतु धवला टीका में ऐसे जीव को दर्शनावरण की चार या निद्रा प्रचला इनमें से किसी एक प्रकृति के साथ पांच प्रकृतियों का वेदक कहा है। धवला टीका का वह उल्लेख इस प्रकार है, चक्षु दंशनावरणीयम अचक्षु दंशनावरणीयम ओहि दंशनावरणीय केवल दंशनावरणीयम इति चतुर्णम दंशनावरणीयानम वेदगो निद्रा पैलानम एकदरण्य सह पंचन्नम वा वेदगो, यानी निद्रा प्रचला का भी वेदक वहाँ कहा है। मोहनीय कर्म के प्रसंग से यहाँ मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का उदय बतलाया है। एक दो तीन किसके लिए बताया है विशेषार्थ में, एक दो तीन बताया थे, एक नंबर कहाँ डाला, केक डाला ही नहीं, अभी बतलाया वो एक। अब दो दूसरा पॉइंट बता रहे हैं विशेषार्थ का, दूसरा पॉइंट मोहनीय कर्म के प्रसंग से यहाँ मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियों का उदय बतलाया है, सो उसका यह आशय है उक्त जीव के समय निश्चात और समय प्रकृति को छोड़कर, उनको तो नहीं लेना है, आगमानुसार सभी प्रकृतियों का उदय संभव है, यथा निख्यात्व चारों क्रोध या चारों मान या चारों माया या चारों लोक, तीन वेदों में से कोई एक वेद, हास्यरति और अरति शोक इन दो युगलों में से कोई एक युगल, तथा भय और जुगुप्सा इस प्रकार दस का या भय जुगुप्सा में एक के बिना नौ का या दोनों को बिना आठ का उदय होता है, इसको भी हमने कल देखा था। तीसरा पॉइंट, दूसरे यहाँ उदयागत प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशों का उदय बतलाया, किंतु धवला टीका में उदयगत प्रकृतियों के अजगण्य अनुत्कृष्ट प्रदेशों का वेदक बतलाया है। यदा यथा उदयल्लाणम पयड़ीनम अजगण्यनुक्तस्य प्रदेशाणम वेदको, जो अनुत्कृष्ट है वो अजगण्य भी होता ही है, परंतु उत्कृष्ट के भी अजगण्य कह देते, इसलिए अजगण्य अनुत्कृष्ट दोनों तरफ से बताया, नहीं जगन्य भी नहीं है और उत्कृष्ट भी नहीं है, इतना ही बताना था। अब उसके उत्तरार्ध के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। ऊपर सूत्र, अंतरम वा कहिं किच्छा के उसामगो कहिं सी विहास, उक्त जीव अंतर कहाँ पर करता है, सूक्ष्म समित्व के काल में, इन्हें होने के पूर्व काल में नहीं, अभी तो ये अध प्रवृत्तिकरण में है, उसके बाद कहाँ पर जाके अंतर होता है, किस में अंतर करता है, दर्शन होने, दर्शन होने, तो कहते कहाँ पर करता है ना, अभी तीन करण हो गए तो कौन से कहाँ पर उसकी पोजीशन, कितना काल जाने के बाद उसको अंतर करेगा, जैसे अनिवृत्तिकरण का संख्यात वह भाग बाकी रहेगा तब करेगा। अब यहाँ क्या बताते हैं देखेंगे, तो अंतर कहाँ पर करता है और किन किन कर्मों का उपशामक होता है, इस पद की विभाषा। तीसरी गाथा के इस उत्तरार्ध के अर्थ का इस समय विशेष व्याख्यान अधिकार प्राप्त है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। न ताव अंतरम उवसामगो वा पुरदो होदीदीप्ति, अध प्रवृत्तिकरण के प्रथम समय में न तो अंतरकरण होता है और न ही यहाँ पर वह उपशामक होता है, आगे जाकर ये दोनों कार्य होंगे, क्योंकि हमें पता है, हमने पढ़ा है पहले कि अनिवृत्तिकरण में ये उपशम, यानी पहले क्या करता है, अंतर करने का कार्य भी होता है और उपशम करने का कार्य भी करता है, उपशम समय तो अलग बात है और उपशम करण यानी कर्मों को उपशमाता उपशमाता चलता है, एक समय में झटके से उपशम नहीं होता, तो उसका कार्य कब होगा, अंतरकरण पूर्ण होने के बाद उपशमकरण चालू हो जाता है, परंतु ये कहते यहाँ पर नहीं होता, आगे चलकर होगा। यहाँ बात क्या चल रही है, अध प्रवृत्तिकरण के पहले समय में क्या क्या पोजीशन है उसकी चर्चा कर रहे हैं। देखो, इस समय दर्शन मुख का न तो अंतरकरण होता है न ही उपशामक पना ही पाया जाता है, किंतु ये दोनों आगे अनिवृत्तिकरण में प्रविष्ट हुए जीव के होंगे। यह यहाँ सूत्र के अर्थ का तात्पर्य है। इस प्रकार तीसरी गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान समाप्त हुआ। अब चौथी गाथा के अर्थ का विशेष व्याख्यान करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। किम खिदियाणि कम्माणि अनुभागेषु केशुवा ओवर्थेयूण शेषाणि कम ठाणम परिवज्यदीप्ति विहास, उक्त जीव किस स्थिति वाले कर्मों का और किन अनुभागों में स्थित कर्मों का अपवर्तन करके किस स्थान को प्राप्त करता है, इसकी विभाषा। यहाँ पर अवसर प्राप्त इस चौथी गाथा के अर्थ का इस समय विशेष व्याख्यान करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अपवर्तन करना है ना, घटाना। अब उसका उत्तर कहते हैं, श्री घादो संख्यज्जा भागे घादे दून संख्यज्जि भागम परिवज्जयी, स्थिति घात संख्यात बहुभाग प्रमाण स्थितियों का घात कर संख्यात्वे भाग को प्राप्त होता, यानी कांडक के द्वारा होगा तो कितना संख्यात्वा भाग शेष रहेगा, संख्यात बहुभाग नष्ट होगा। अध प्रवृत्तिकरण के अंतिम समय में जो स्थिति सत्कर्म अंत कोड़ाकोड़ी सागरोपम प्रमाण है, उसमें से अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के बल से यथाक्रम संख्यात हजार स्थितिकांडक घातों के द्वारा, एक स्थितिकांडक की बात नहीं, संख्यात हजार यानी हजारों स्थिति कांडक घातों के द्वारा संख्यात बहुभाग प्रमाण स्थिति का घात कर पहले की विवक्षित स्थिति के संख्यात्रय भाग प्रमाण स्थिति को यह प्राप्त होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। मैंने एक एक कांडक घात में थोड़ी 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 स्थिति घटते 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 संख्यात्रय भाग प्रमाण शेष रहे थे। अनुभाग घातो अनंत चाहिए, अनते हुए न अनंत। हाँ, अनुभाग अनुभाग घातो प्राकृत में अनंते भागे घादि दून अनंत भागम परिवज्जे। अनुभाग घात अनंत बहुभाग प्रमाण अनुभाग का घात कर अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग को प्राप्त होता है। ये भी अप्रशस्त कर्मों में लागू होता है। अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग से अनंत बहुभाग का अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों के बल से घात कर उसके अनंत वे भाग प्रमाण अनुभाग को यह प्राप्त होता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब ये दोनों ही घात अध प्रवृत्त करण को उल्लंघन कर अपूर्व करण के पहले समय से प्रवृत्त होते अधकरण में नहीं होते कोई स्थिति कांडक। प्रायगलब्धि में एक कांडक हुआ था स्थिति का और एक कांडक हुआ था अनुभाग का शुरू में, उसके बाद बीच में कोई स्थिति कांडक नहीं होते, मात्र अपूर्व करण से ही वो शुरू हो जाते स्थिति कांडक घात भी और अनुभाग कांडक घात भी। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र को कहते हैं 232 पृष्ठ। तदो इमस्त चरिम समय अधापवत्त करणे वर्तमानस्य नत्थिति घादो वा अनुभाग घादो वा से काले दोवी घादा पवित्ति हिंति। अतः अध प्रवृत्त करण के अंतिम समय में विद्यमान इस जीव के स्थिति घात और अनुभाग घात नहीं होता, किंतु तदनंतर समय में दोनों ही घात प्रवृत्त हो गया यानी शुरुआत हो जाएगी। यद्यपि यह जीव प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से अत्यंत विशुद्ध होता हुआ भी स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात के योग्य विशुद्धि को नहीं प्राप्त होता, नीचे ही रहता है। इसलिए अधप्रवृत्त करण भाव से विद्यमान इसके यानी जब तक अधप्रवृत्त करण में है तब तक स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होता, किंतु तदनंतर समय में अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट होने पर गुणश्रेणी निक्षेप आदि के साथ। ये आदि में क्या क्या लेना अश्विन भाई?
क्या
क्या कहते हैं? अपूर्वकरण के प्रथम समय में प्रविष्ट होने पर गुणश्रेणी निक्षेप आदि के साथ स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात प्रवृत्त होंगे, इसलिए वहीं पर उनका कथन करेंगे। यह इस सूत्र का भावार्थ है। हमेशा जहाँ जहाँ अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, अब चार बातें होती हैं, चौथी बात कौन सी? यहाँ तो तीन बता दिए, स्थिति कांडक बताए, अनुभाग कांडक बताए, गुणश्रेणी बताए, चौथी बात कौन सी? गुण संक्रमण। बहुत अच्छा, परंतु यहाँ पर गुण संक्रमण नहीं होगा प्रथमोक्षण के पहले, परंतु जहाँ जहाँ अपूर्वकरण होता है वहाँ होता है गुण संक्रमण, यहाँ नहीं होगा। विशेषार्थ क्षोक्षम आदि चार लब्धियों से संयुक्त जो जीव दर्शन होकर उपशम करने के सन्मुख होकर अधप्रवृत्त करण में प्रविष्ट होता है, उसके प्रथम समय से लेकर इस करण के अंतिम समय तक प्रत्येक समय के परिणामों में उत्तरोत्तर अनंत गुणी विशुद्धि होती जाती है। इस जीव के अपने काल के भीतर प्रत्येक समय में अप्रशस्त कर्मों का अनंत गुणहीन द्विस्थानीय और प्रशस्त कर्मों का अनंत गुणा चतुस्थानीय अनुभाग बंद होता रहता है। बंद की बात तथा एक स्थितिबंध का समय पूर्ण होने पर दूसरा स्थितिबंध। पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण कम होकर, कितने कटौती कितनी होती है स्थितिबंध में, पल्ले का असंख्यातवा भाग, ऐसे करते 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 पल्ले प्रमाण फिर सागरों प्रमाण इतना घटेगा, कम होकर अंतर्मूर्त काल तक होता है। इसी क्रम से तीसरा चौथा आदि जानना चाहिए। इस प्रकार इस करण में संख्यात हजार स्थितिबंधापसरण होते हैं, किंतु इन परिणामों को निमित्त कर स्थितिकांडक घात, अनुभाग कांडक घात, गुणश्रेणी रचना और गुणसंक्रम, ये चार आवश्यक नहीं होते, अधप्रवृत्त में नहीं होते, ये बात बताना चाहिए। अनंत गुणी विशुद्धि तो होती है, प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ता है, चतुस्थानी होता है बंधन, और प्रशस्त का अनंत गुणाहीन होकर द्विस्थानी हो जाता है। फिर भी यहाँ ये स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण नहीं होते। यहाँ अपूर्व करण में स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात और गुणश्रेणी रचना होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहाँ चौथा नाम नहीं लिया है क्योंकि यहाँ ये दर्शन मोह की उत्पन्न संबंधी करण परिणाम चल रहे, अन्यत्र जहाँ अपूर्व करण है वहाँ चार बातें होती है। ऊपरी तन एक कांडक प्रमाण स्थिति का खाली क्रम से अंतर्मूर्त काल में घात करना स्थिति कांडक घात कहलाता है। खाली समझते हो, जैसे स्थिति यानी जो कुछ वहां स्थिति पड़ी है, हम मान लेते हैं यहां से यहां तक दर्शन मोह की स्थिति है, तो कांडक घात का अर्थ क्या, मान लेते हैं इतना कांडक शुरू हुआ, कांडक का घात शुरू हुआ, तो पहले समय में पूरे ऊपर से नीचे तक सभी परमाणु में से निकलकर नीचे दिखती दिखे, दूसरे समय में और, तीसरे समय और, ऐसे ये अंतिम समय में इतना रह गया, तो एक एक समय में जो सभी निषेकों में से द्रव्य निकलकर नीचे आता है, तो एक फाली, दूसरी फाली, तीसरी फाली, जैसे वो गन्ना कैसे पूरा हम वर्टिकल चीरते हैं ना और उसको निकाल लेते हैं एक एक, तो ऐसे पूरा वो कांडक प्रमाण पूरा का पूरा छिलके नीचे आ जाता है, तो ये अंतिम फाली रहेगी। तो ये देखो, ये ऐसा अंतिम फाली, ये नीचे आ जाती आती है ना, क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका, कभी की वो तो निकल नहीं गई है, उदय होकर फिर नहीं गए हैं, उसके नीचे जितने नीचे गए उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन होते समय वहाँ पहले उदय में देंगे कुछ, फिर गुणश्रेणी रूप से कुछ और दिया जाएगा, फिर ऊपर सर्वत्र ऐसे हीन क्रम से दिया जाएगा, फिर दूसरी फाली, दूसरा कांडक होगा, वो भी इसी तरह से सब नीचे नीचे आते चले। यहाँ क्या लिखा है, उपरीतन एक कांडक प्रमाण स्थिति का खाली क्रम से अंतर्मूर्त में, अंतर्मूर्त काल में घात करना, यानी उतनी स्थिति कम हो गई, घटी गई स्थिति, घटी है, परमाणु अभी जिनको छोड़कर गए नहीं है, नीचे के निषेकों में आ गए, यानी उत्कृष्ट ऊपर ऊपर की स्थिति वो घट गई है कहना है, स्थिति कांडक घात कहलाते हैं। अप्रशस्त, ये स्थिति कांडक घात तो प्रशस्त अप्रशस्त दोनों में होते हैं, और अनुभाग कांडक घात मात्र अप्रशस्त में होगा। अप्रशस्त प्रकृतियों के उपरीतन एक कांडक प्रमाण बहुभाग अनुभाग का फाली क्रम से अंतर्मूर्त काल में घात करना अनुभाग कांडक घात कहलाता है। देखो, जब तक जितने एक अंतर्मूर्त में एक स्थिति कांडक घात होता है, उतने ही अंतर्मूर्त में हजारों अनुभाग कांडक घात होते हैं, उसका कांडक घात का काल छोटा है। आयु के सिवाय शेष कर्मों के उपरीतन स्थितियों में स्थित कर्म पुंज में अपकर्षण उत्कर्षण भागार का भाग देने पर जो एक भाग द्रव्य प्राप्त हो, यानी यहाँ जो द्रव्य था, जितने नंबर ऑफ परमाणु, उसको अपकर्षण भागार से भाग देना, या अपकर्षण भागार उत्कर्षण भागार सेम है, उसको मात्र अपकर्षण भागार कहो या अपकर्षण उत्कर्षण कहो एक ही बात है। तो कितने परमाणु एट ए टाइम में नीचे आते हैं, तो अपकर्षण उत्कर्षण का भागार का भाग देने पर एक भाग परमाणु नीचे आते हैं। फिर जो इतना जितने द्रव्य नीचे आते अपकर्षण होता है उसमें असंख्यात लोक का भाग देने पर, यानी जो प्रदेश कुंज नीचे आया है एक समय में उसको दोबारा असंख्यात लोक का भाग देना, उसमें से जो एक भाग प्रमाण उदयवाली प्रकृतियों का द्रव्य उदयावली में निक्षिप्त करना, वह उदयवाली व अनुदयवाली शेष प्रकृतियों के द्रव्य को गुणित क्रम से उदयावली के अनंतर समयवर्ती निषेक से लेकर गुणश्रेणी शीर्ष तक निक्षिप्त करना गुणश्रेणी रचना कहलाती। क्या कहना चाहते हो? जितना द्रव्य नीचे आया अभी खाली रूप से आ रहा है या अन्य भी नीचे भी अपकर्षण करके आ रहा है, यहाँ तो कांडक घात हो रहा है परंतु अपकर्षण तो सब द्रव्य में से होता है, अपने अपने नीचे के निषेकों में चला जाता है। तो पूरे द्रव्य को अपकर्षण भागार से भाग दिया, एक भाग निकाला बाहर, इसमें से एक भाग बाहर निकाला, उसको असंख्यात लोक का भाग दिया। अब जो एक भाग वो उदयावली से लेकर यानी उदय के समय से लेकर एक आवली काल तक इस तरह से दे दिया, ऑलरेडी वहाँ निषेक थे उसमें और आके जुड़ गए, असंख्यात लोक का भाग लेकर एक भाग बना। अब उसके आगे क्या कहते हैं? गुणश्रेणी, एक भाग प्रमाण तो वहां देना, वो उदय वाली अनुदय वाली शेष प्रकृतियों के द्रव्य को गुणित क्रम से उदयावली के ऊपर देना। एक्चुअली उसका उन्होंने अलग अलग, इसमें भी असंख्यात लोक का भाग देकर जो है ना, उसमें भी फिर और एक भाग देकर उदयावली और गुणश्रेणी में देना, ऐसा है पल्ले का असंख्यात भाग, वो उन्होंने बीच में नहीं लिखा है, फिर भी विशिष्ट यहाँ अंतर्मूर्त काल तक गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा। 100 यहाँ से इतना दिया, 100 ओरिजिनल था उसमें ऐसा मिलाया, एक एक निषेक में असंख्यात गुणाक्रम से। अब जो और बाकी रह गया अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण वहाँ स्थिति बाकी है, वो सब में इस तरह से दिया जाएगा। ऐसे तीन उदयावली में, गुणश्रेणी में और उपरीतम स्थिति में। यहाँ माल ज्यादा दिया है परंतु ये अंत कोड़ा कोड़ी प्रमाण निषेकों में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ना, इसलिए यहाँ कम दिखता है। यह अंतर्मूल प्रमाण निषेकों में दिया, वो गुणश्रेणी रूप से दिया और नीचे उदयावली ने एक आवली काल तक दिया। तो इस तरह से इसके तीन विभाजन होकर द्रव्य दिया जाता है। गुणश्रेणी शीर्ष है टॉप मोस्ट निषेक, गुणश्रेणी का टॉप मोस्ट निषेक उसको गुणश्रेणी शीर्ष कहते हैं। यानी यहाँ पर ये जो वाला यहाँ का जो है ना, ये वाला एक निषेक, इसको शीर्ष कहेंगे। शीर्ष ने हेड, शीर्ष माता, कितने होते हैं? एक ही होता है ना। इस सब का विशेष विचार आगे किया है, यानी जब उसका विषय आएगा तब करेंगे। हाँ आगे किया ही है कहते हैं, आगे है आने वाले आगे। हाँ यहाँ मात्र उनका स्वरूप बतलाने के लिए संक्षेप में निर्देश किया। प्रायोगिक लब्धि का कांड किया ना, हाँ इसमें अभी कुछ चर्चा की नहीं उन्होंने, उन्होंने प्रायोगिक लब्धि के अलग अलग यानी कुछ अलग पद्धति से यहाँ कथन हो रहा है। अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में क्या पोजीशन है ये बात बताई, उसके पूर्व में बंधाक्षरण क्या क्या हो चुका वो बात बताइए, अलग हमने। हाँ इसमें तो अभी तक नहीं आया, हमने जो जाना है वो तो लब्धिसार के आधार पर जाना है।
कांडक आगे बताने वाला है ना सब,
ये कांडक तो अभी अपूर्व करण से होने वाले,
ये बराबर है पर उसका आगे डिटेल आएगा ना, यहाँ पे
जहाँ आएगा वहाँ आएगा। कौन से
जिसका उदय नहीं है?
हाँ जो उदय में नहीं है उसका तो अन्य प्रकृति सजाती अन्य प्रकृति रूप होकर वो नहीं, प्रकृतियों के कारण अनुभव नहीं बढ़ता। प्रदेश बढ़ने से अनुभव नहीं बढ़ता। असाता साता रूप होकर ही उदय में आते हैं। नहीं हाँ नहीं, इसमें माइनस नहीं होता। जिस अनुभाग रूप से उदय चल रहा है उस अनुभाग रूप से तरण होकर उदय में आते हैं। नहीं अभी आगे का सूत्र एदाओ चत्तारी सुप्त गाहाओ अधापोत्त कर्णस्य पढ़न समय परु विदाओ। इन चार गाथाओं की अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में प्ररूपणा करनी चाहिए। यह सूत्र गतार्थ है, यानी ऑलरेडी जो पहली चार गाथा है वो अधप्रवृत्तकरण के पहले समय संबंधित थी। अब दर्शन मोह के उपशामक का परिणाम कैसा होता है, इस प्रकार इस सूत्र पद का आलंबन लेकर दर्शन मोह के उपशामक की करण लब्धि का कथन करने के लिए आगे का प्रबंध कहते हैं। दंशन मोह वसामगस्तिदिहम करणम। दर्शन मोह के उपशामक के तीन करण होते हैं, जिस परिणाम विशेष के द्वारा दर्शन मोह का उपसमाधि रूप विवक्षित भाव किया जाता है अर्थात उत्पन्न किया जाता है वह परिणाम करण कहलाता है। परिणाम को यहाँ करण कहते हैं। वह करण यहाँ पर तीन प्रकार का होता है, यह इस सूत्र द्वारा ज्ञात कराया गया है। अब उन तीन करणों का नाम निर्देश करते हुए पृच्छा वाक्य को कहते हैं। तम जहाँ वे जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब नाम बताएंगे। अधापवत्त करणम अपूर्व करणम अनियत्ति करणम च अधः प्रवृत्त करण अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। इस प्रकार ये तीन करण यहाँ पर होते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इन तीन करणों के अर्थ का किंचित प्ररूपण करते हैं। ये शब्द कैसे आया है, उसका क्या अर्थ है। यथा जिस करण में विद्यमान जीव के करण परिणाम अध यानी नीचे अर्थात उपरीतन समय के परिणाम, ये कुछ रह गया है, अध यानी नीचे अध यानी नीचे फिर बता रहे, यानी उपरीतन समय के परिणाम नीचे के समय के परिणामों के समान प्रवृत्त होते हैं वह अधप्रवृत्त करण। प्रथम ये बताना चाहते थे कि जिस करण में विद्यमान जीव के करण परिणाम अध यानी नीचे के समय के परिणामों के समान प्रवृत्त होते हैं, फिर उसको अर्थात कहकर बताया कि ऊपर के यानी आगे के पश्चात वाले समय के परिणाम नीचे के यानी पूर्व के परिणाम के समान प्रवृत्त होते हैं, उसको कहते हैं अध प्रवृत्त करण। इस करण में उपरिम समय के परिणाम नीचे के समयों में भी पाए जाते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अभी हमने वो स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में भी अनुपृष्टि देखी ना, वैसी यहाँ समस्या। शाम को विषय चल रहा अपना, जिस करण में प्रत्येक समय में, अब जब यहाँ जो हम कहते हैं प्रतिथने जीवों के परिणाम, ये कब की बात है, तीनों काल की। तीनों काल के जो जो जीव अधप्रवृत्तकरण परिणाम में आए हैं उन तीनों काल के जीवों के परिणाम की एक दूसरे के साथ तुलना करेंगे तो कब की बात है, यानी जिसके शुरू करके एक समय हुआ, जिनके शुरू करके दो समय, नहीं तो आगे पीछे कैसे कहेंगे। तो हम जब कहेंगे ना हमारे चार बच्चे हैं, तो पहले साल में कौन बच्चा कितना बड़ा था मोटा था, तो एक साल में अभी एक साथ सबको कंपेयर नहीं करना है। जब वो पहले एक साल का हुआ था, जब दूसरा एक साल का हुआ था, जब तीसरा एक साल का हुआ था, चौथा एक साल का हुआ था, तब उनकी क्या पोजीशन थी। अभी ऐसा प्रत्येक समय के परिणाम, क्योंकि भगवान के ज्ञान में तो सभी आए ना, सभी जो उनके परिणाम वो जानते हैं, तो टोटल परिणाम कितने, तो असंख्यात लोग हैं, और जीव कितने, तो अनंत है, क्योंकि तीन काल के गिनना है, तो उनमें क्या क्या वेरिएशन होगा। तो किसी जीव ने चौथे समय में जो परिणाम किए, किसी जीव के पहले समय में उतने ही शुद्ध थे। ये जो ऊपर और नीचे में जो समानता है उसको कहेंगे अधःप्रवृत्तकरण। अब अपूर्वकरण की बात करें कि अपूर्वकरण के प्रत्येक समय में अपूर्व अर्थात असमान यानी नियम से अनंत गुण रूप से बुद्धिंगत करण अर्थात परिणाम होते हैं, वह अपूर्वकरण। अपूर्वकरण का अर्थ ऐसा नहीं कि सब में समानता है, फिर भी पहले समय वाली जो रेंज है वो पूरी रेंज से दूसरी समय की रेंज पूरी अपूर्व ही है। वहाँ का दूसरे समय का किसी भी जीव का कोई भी परिणाम पहले समय वाले के साथ समान नहीं है, मैच नहीं होता, वो अपूर्व यानी अनंत गुणा विशुद्ध है। यानी पहले समय में किसी का उत्कृष्ट परिणाम है तो दूसरे जीव किसी भी जीव के दूसरे समय के जघन्य परिणाम है वो उससे अनंत गुणा ही होगा। तो हर एक समय की अपनी अपनी रेंज अलग अलग होगी। असमान एक समय वाले समान असमान है क्योंकि उसमें जघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक बहुत सारे भेद है, असंख्यात लोग भेद है, परंतु दूसरे समय के किसी के साथ समानता नहीं है। ये तो अपूर्वकरण हुआ। देखो यहाँ लिखा ना, इस करण में होने वाले परिणाम प्रत्येक समय में असंख्यात लोक प्रमाण होकर अन्य समय में स्थित परिणामों के सदृश नहीं होते, यह उक्त कथन का भावार्थ है। अब जिस करण में विद्यमान जीवों के एक समय में परिणाम भेद नहीं है, जो जिस समय का है वो सभी जीवों के परिणाम एक समान, अनंत जीव अलग अलग कालों में जब जब इस करण में पहुंच गए हैं तो एक समय में परिणाम भेद है, वह अनिवृत्ति करण है। इन करणों का विशेष निर्णय ऊपर करेंगे, ऊपर ने बाद में। इस प्रकार अधप्रवृत्त आदि करणों का नाम निर्देश करके, अभी मात्र यहाँ नाम बताया, अब इन तीनों के काल से ऊपर ऊपर ने पश्चात उपशमन काल होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र आया है। चौथी उपशमनाद्धा, चौथी उपशमनाद्धा है, शंका उपशमनाद्धा किसे कहते हैं, जिस काल विशेष में दर्शन मोहनीय उपशांत होकर अवस्थित होता है, यानी उपशमना पूरी हो गई है उसकी, इसलिए करण के बाद बताया। उपशम करने का कार्य जो है वो अनिवृत्ति करण में होता है, परंतु उपशम होकर पूर्ण हो गया, अब उपशमित रहने का काल, इसलिए चौथा बताया, यानी उपशम सम्यक्त्व का काल लेंगे। तो उपशांत होकर अवस्थित होता है उसे उपशमनाद्धा कहते हैं। उपशम समय दृष्टि का काल, यह उक्त कथन का तात्पर्य। चल रहा है हाँ, उसको उपशमनाद्धा कहें क्योंकि करण के पश्चात वाला काल लिया। यदि वो उपशम करण का काल कहेंगे, उपशम जिस काल में किया जाता है अंतर्मुहूर्त में, वो बात नहीं यहाँ पर। एदेसिम करणानम लक्षणम, अब इन करणों का लक्षण कहते हैं। इन करणों का लक्षण का कथन इस समय करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। उसमें भी सर्वप्रथम उद्देश्य के अनुसार निर्देश किया जाता है, इस न्याय के अनुसार प्रथम ही अधप्रवृत्त करण का लक्षण कहते हैं, क्योंकि वो पहला दूसरा तीसरा करण है क्रम से, तो पहले अधप्रवृत्त करण का लक्षण बताएंगे। उसमें दो अनुयोग द्वार है, अनुकृष्टि प्ररूपणा और अल्प बहुत्व। अब शाम का ही यही विषय चला ना, अनुकृष्टि का भी अभी हुआ है। यहाँ सर्वप्रथम सूत्र में निबद्ध किए गए अल्प बहुत्व का साधन करने के लिए अनुत्कृष्टि का कथन करेंगे। यथा अधःप्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पृथक पृथक एक एक समय में क्षण वृद्धियों के क्रम से अवस्थित और स्थितिबंधापसरण आदि के कारणभूत असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं। क्या कहना चाहते हैं? अधःप्रवृत्तकरण के जितने समय है, हम मान लेते हैं ना 16 समय है, तो प्रत्येक समय में क्या होगा, कितने परिणाम है टोटल अलग अलग जीवों के, नाना जीवों की अपेक्षा बात कर ली, तो असंख्यात लोक प्रमाण। तो ये असंख्यात लोक कैसे हैं? तो इसमें षट्स्थान बुद्धि के असंख्यात लोक प्रमाण स्थान है। एक बार षट्स्थान बुद्धि, दो बार षट्स्थान बुद्धि, ऐसे कितने होते हैं? असंख्यात लोक। एक षट्स्थान बुद्धि में स्थान कितने होते हैं? क्या पांच बार?
अंगुल
सुचंगुल।
ठीक
है, 1 प्लस सुचंगुल का असंख्या का भाग, पांच बार लिखो आपस में गुणा करो, इसमें स्थान एक षट्स्थान में होते हैं सब मिलके, क्योंकि उसमें अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात वगैरह सब मिलके स्थान कितने होते, तो इतने होते। सुचंगुल का असंख्या का भाग में एक प्लस करो, ऐसे पांच बार लिखो और आपस में गुणा करो, इतने होते। लिख के देखा, क्योंकि हमने क्या देखा, एक एक कांडक का प्रमाण कितना है वहां पर, कांडक यानी चार ऊ वाला जो कांडक है वो कितने बार होता है, तो अंगुल की असंख्या से भाग बार होने के बाद आगे वाला होता है। तो ये सुचंगुल के लिए भी दो ही संख्या लिखते संदृष्टि में, ये सुचंगुल का असंख्या का भाग और उसके ऊपर 1 प्लस करेंगे, और वैसे पांच बार लिखो। रेस टू फाइव अपनी भाषा है ना, और आपस में गुणा करो, तो इतने तो एक षट्स्थान में स्थान होते हैं, टोटल स्थान। ऐसे असंख्यात लोक के षट्स्थान होते हैं, एक एक समय में अलग अलग परिणाम। छह वृद्धियों के हैं ना, ये छह वृद्धियों के में एक षट्स्थान में कितने स्थान है, ये वन प्लस सुचंगुल का असंख्या का भाग पांच बार लिखो आपस में गुणा करो, इसमें एक षट्स्थान में स्थान होता है। तो ये एक एक समय के इतने परिणाम बताए उन्होंने, और वो परिणाम कैसे हैं, तो उनके कारण स्थिति बंधापसरण आदि विशेषताएं चलती रहती, क्योंकि स्थिति बंध घटते ही चला जाता है ना। स्थितिबंध का घटना प्रागलब्धि से शुरू हुआ था, यहाँ पर भी स्थितिबंधापसरण चल ही रहा है, अनुभाग का ही घटना चल ही रहा है। और प्रशस्तों
ये जो प्रकृति बंधापसरण देखा वो तो अधप्रवृत्त, अरे
वो प्रागलब्धि
में था, प्रागलब्धि में हो गया।
अभी यहाँ क्या लिखा, ये वाक्य पूरा फिर पढ़ती हूँ। अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय से लेकर अंतिम समय तक पृथक पृथक एक एक समय में, यानी प्रत्येक समय में छह वृद्धियों के क्रम से अवस्थित, यानी कितने हैं ऐसे, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान, उसमें क्या है, तो छह वृद्धियां पाई जाती है, षट्स्थान पतित वृद्धि, और कैसे, स्थितिबंधापसरण आदि के कारणभूत परिणाम, यानी इनके कारण स्थितिबंधापसरण आदि कार्य होते हैं। आदि में क्या क्या होता है, अनंत गुणी विशुद्धि चलती है, स्थितिबंधापसरण होता है, अप्रशस्त में अनुभाग बंधापसरण होता है, स्थितिकांडक यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, स्थिति कांडक भी होगा, पूर्वकरण है, नहीं अध प्रवृत्त चल रहा है, अध प्रवृत्त है यहाँ पर, अध प्रवृत्त चल रहा है, ना ही स्थिति कांडक घाता है, ना ही अनुभाग कांडक। तो प्रशस्त कर्मों का अनुभाग बढ़ना, अप्रशस्त का घटना, स्थिति का बंध घटना और अनंत गुणी विशुद्धि होना आदि कार्य इन परिणामों के कारण होते हैं। आगे परिपाटी क्रम से विरचित इन परिणामों के, परिपाटी ने एक के बाद एक ऐसे परिणाम हम अगर यहाँ लिखेंगे, पुनरुक्त और अपुनरुक्त भाव का अनुसंधान करना अनुपृष्टि। हमें मालूम है अनुपृष्टि क्या है, इसलिए इसका अर्थ हम लगा सकते हैं, ये भाषा ऐसी है ना। परिपाटी क्रम से विरचित, यानी हम 16 समय मानेंगे तो एक के ऊपर एक ऐसे 16 समय लिखेंगे, और प्रत्येक समय में कितना है तो असंख्यात लोकमान स्थान है, तो उसके अलग अलग खंड करके हम यहाँ लिखेंगे, दूसरे समय के, तीसरे समय के, चौथे। तो अभी हम हमें पता है हमने 39, 40, 41, 42 ऐसे 162 के भेद किए थे, तो ये ऊपर नहीं है, बाकी पुनरुक्त स्थान ऊपर पाया जाएगा और यहाँ एक नया पुनरुक्त स्थान उत्पन्न होगा दूसरे समय में। कुछ तो नीचे के समान है और कुछ परिणाम तो ऐसे कि वहाँ नए पाए जाए, फिर उसमें ऊपर और चले जाना, उसमें भी एक अंतिम खंड एक नया पाया जाए। तो यहाँ कहते हैं कि परिपाटी क्रम से विरचित इन परिणामों के पुनरुक्त और अपुनरुक्त भाव का अनुसंधान करना है, यानी नीचे ऊपर की समानता जो है इसको अनुसंधान कहेंगे, ऊपर का और नीचे का समान सदृश परिणाम है उसको कहेंगे अनुकृष्टि, अनुत्कृष्टि, अनुकृष्टि, एक्चुअली अनुत्कृष्टि कैसा हुआ,
अनुकृष्टि है
ना, तो कहाँ से आया अनुकृष्टि, वो निकाल देना, अनुकृष्टि है वो, कृष्टि, अनुकृष्टि, अनुकर्षणम अनुकृष्टि, वो शब्द कैसा हुआ, अनुकर्षण हुआ, अर्थात उन परिणामों की परस्पर समानता का विचार करना, यह अनुकृष्टि का एक अर्थ है। एक जीव की अपेक्षा ये कुछ, ये नाम कुछ मायना नहीं रखते, एक जीव की अपेक्षा क्या हो रहा है, विशुद्धि अनंत गुना बढ़ रही है अपनी अपनी बस। यहाँ तो अलग अलग जीवों में कंपेयर करेंगे तो ये ऊपर नीचे की समानता कह सकते, एक जीव में क्या बताना, उसका अपना अपना परिणाम तो अनंत गुना है विशुद्ध। तो ये नाम जो है वो नाना जीवों की आपस में तुलनात्मक कहने से ये नाम बन, परंतु वह संसार के योग्य स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानादि रूप परिणामों के रहते हुए पल्लवपन के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल ऊपर जाकर विच्छिन्न होती है। क्या कहना चाहते हैं, ये जो परिणामों की समानता है अनुकृष्टि वो कैसी है, तो कहते हैं संसार के योग्य स्थितिबंधा व्यवसाय स्थानादि रूप परिणामों के रहते हुए पल्लवपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल ऊपर जाकर विच्छिन्न होती, यानी वो समानता कहाँ तक रहती है, पल्ल के असंख्यात वे भाग काल तक, नहीं समझे,
पल्ल का असंख्यात भाग सबूत बड़ा है।
देखो ये अनुकृष्टि जो हम अपने संदृष्टि में जो हमने देखा, हमने चार चार खंड किए थे,
अच्छा
चार खंड किए तो चार समय तक समानता थी, वैसे एक्चुअल में कितने खंड करने, तो पल्ले के असंख्यात भाग, और वो समानता कहाँ तक पाई जाएगी, पल्ले के असंख्यात भाग समय नहीं, ये इसका कुछ अलग बात है, इतने समय कहाँ है, पर एक सेकंड
तो ये जो काले होता
नहीं, वह संसार के योग्य स्थिति में परिणामों के रहते हुए पल्लवपन के असंख्यात भाग प्रमाण काल ऊपर जाकर विच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थिति बंध के योग्य परिणामों के सद्भाव में पल्लवपन के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की अनुवृत्ति वहाँ देखी जाती है, परंतु यहाँ पर वैसा नहीं होता है। ये अनुकृष्टि का अर्थ समझ आया,
ये जो कृष्टि जो है
अनुकृष्टि का
परिणामों की समानता है उसका खंड है,
ये जो यहाँ परिणामों में है ऐसी बातें स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में भी अनुकृष्टि होती है, ये बात यहाँ बताना, ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थान जो अभी कर्मकांड में हम पढ़े अभी ये पूरा वाक्य पढ़ेंगे, फिर मैं इसका फिर वह संसार के योग्य स्थितिबंधा व्यवसाय स्थानादि रूप परिणामों के रहते हुए अनुकृष्टि की बात है, पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण काल ऊपर जाकर विच्छिन्न होती है, क्योंकि जघन्य स्थितिबंध के योग्य परिणामों के सद्भाव में पल्लवपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की अनुवृत्ति वहाँ देखी जाती है, परंतु यहाँ पर वैसा नहीं होता, किंतु अंतर्मूर्त प्रमाण अवस्थित काल के जो कि अपने अर्थात अधप्रवृत्तकरण के काल के संख्यात वे भाग प्रमाण है, व्यतीत होने पर अनुपृष्टि का विच्छेद होता है। अभी मुझे समझ में आई बात, यहाँ तो हमने चार समय बताए, ये पल्लवकम का असंख्या का भाग इसमें अप्लाई नहीं होता है। कहाँ होता है? वो स्थिति बंध में होता है। यहाँ क्या होता है? ये जो अंतर्मूर्त प्रमाण जो काल है 16 समय मान लिया, उसका संख्या तो भाग चार समयों तक ही समानता है, उसके ऊपर नहीं। यह दूसरा वाक्य पहले देखते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं होता। नीचे से तीसरी लाइन मिला, किंतु अंतर्मूर्त प्रमाण अवस्थित काल के, यानी अपूर्वकरण अधप्रवर्तन का काल फिक्स है, सबके लिए उतना ही काल है, किसी को छोटा बड़ा नहीं है, तो वो अवस्थित काल। उस काल के जो कि अपने अर्थात अधप्रवृत्तकरण काल के संख्यात्वे भाग प्रमाण है, व्यतीत होने पर अनुपृष्टि का विच्छेद होता है, यानी अधप्रवृत्तकरण काल का भी अंतर्मूर्त फिक्स है और अनुपृष्टि कहाँ तक होती है समानता, वो भी अंतर्मूर्त प्रमाण है। वो कितना है? तो पूरे अधप्रवृत्त के संख्यात्वे भाग प्रमाण। हमने मान लिया था 16 समय अधप्रवृत्त है, तो चार समय तक समानता है, वो चार समय भी अंतर्मूर्त कहलाएगा और चार समयों तक ही वो समानता पाई जाएगी। कहीं पर भी ले लो, पहले से चौथे समय तक, दूसरे से पांचवे समय तक, तीसरे से छठे समय तक, इतनी उसकी समानता होगी, चार समयों तक ही समानता बनी रहेगी। ये बात यहाँ पर होती है, लागू होती है। अब उन्होंने पल्ले का कहाँ से निकाला?
तो
नहीं, उसकी बात नहीं है। देखो ये ऊपर का ऊपर
तो संसार के परिणाम जो होते हैं,
बोलो,
उसमें जो पहले का संख्या का भाग प्रमाण जो काल तक वहाँ पे परिणामों की समानता हो सकती है, ऐसा उनका कहना है।
नहीं, यहाँ अभी अभी हमने जो कर्मकांड में विषय देखा, जहाँ अनुपृष्टि देखी, कौन से परिणामों में देखी? नहीं, स्थिति बंध के, स्थिति के भेद अलग अलग देखे। ये जघन्य स्थिति है, ये एक समय अधिक स्थिति है, दूसरा और एक समय अधिक स्थिति है, तो ये इतनी ही स्थिति कितने परिणामों के द्वारा बन सकती है? तो कहते हैं अलग अलग इतने परिणामों के द्वारा इतनी स्थिति बन सकती है। कितने परिणामों के द्वारा? कितने परिणामों के द्वारा? असंख्यात लोक परिणामों के द्वारा इतनी स्थिति बन सकती है।
दूसरी
स्थिति के लिए
असंख्यात लोग,
वो उसका अपना असंख्यात लोक है, परंतु पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण जो ओवरलैपिंग है ना, यहाँ इसमें से ये भी स्थिति बनती, ऊपर की भी बनती, तो उसमें इसका ऐसा हम करेंगे दूसरा अपना, कि इतने कुछ जो है परिणाम, वो जगन्य स्थिति के कारण भूत भी हो सकते हैं, इसमें भी स्थिति के कारण हो सकते हैं, ऊपर की भी हो सकते हैं। तो ये जो पल्ले के असंख्यात भाग जो काल है, वहां तक वो समानता हो सकती है, यानी उसकी नीचे और ऊपर की समानता, वो जघन्य भी बन कर सकते हैं, एक समय अधिक भी बन सकते हैं और एक समय अधिक भी बन सकते हैं। यानी पल्ले के असंख्यात भाग काल प्रमाण वो समानता पाएगी,
काल प्रमाण जो परिणामों की समानता है वो पहले समय के लिए भी,
यानी उतनी ओवरलैप होगी। हाँ, एक ही परिणाम से अलग अलग स्थिति का बंध होगा और एक ही स्थिति बंध के लिए अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होंगे। ये अनुपृष्टि वहाँ भी लागू होती है, परंतु वहाँ तो पल्ले का असंख्यात भाग काल तक अनुपृष्टि चली जाती है, परंतु यहाँ तो अंतर्मूर्त का भी संख्यात भाग प्रमाण है। ये बात बताना,
वो भी अंतर्मूर्त का, जो अंतर्मूर्त का संख्यात भाग है
वो भी अंतर्मूर्त, हमने यहाँ उसको चार समय मान लिया और पूरा अदर प्रवृत्त का हमने 16 समय मान लिया। मंजे भी इनको ख्याल में आया, शाम की कैसे सुनी कि नहीं सुनी? अनुकृष्टि की नहीं सुनी, कर्मकांड के अनुकृष्टि की स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम वो नहीं सुना। वहाँ यही अनुकृष्टि, उसके लिए हमने अदर प्रवृत्तकरण का दृष्टांत देकर समझा और वहाँ संदृष्टि भी वही बनाई, पहले परिणाम, पहले समय में 162 अलग अलग परिणाम, दूसरे समय में 166, तो क्या करना उसके अलग अलग, इसको तिर्यक गच्छ कहेंगे आड़ा, और ये वर्टिकल उसको कहेंगे ऊर्ध्व गच्छ। वो 16 समय मान लिए और ऐसे हमने चार खंड कर दिए, तो 162 अलग अलग परिणाम, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, ऐसे नंबर 162 तक के अलग अलग परिणाम पहले समय में पाए जाते हैं। तो 139 तक का एक ग्रुप, 40 से लेकर 79 तक का दूसरा ग्रुप, उसकी संख्या कितनी है? 40, 41, 42, 43, वो तो है 40। फिर 80, 81, 82 ऐसे 121 तक गुना, 120 तक गिनो तो 41 हो जाएगा, और 121 से लेकर 162 तक गिनो तो ये 43 हो जाएगा। तो ये उसके हमने तीन चार भेद किए खंड के
परिणाम,
हर एक की अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ेगी। तो यहाँ जो 39 वाला है, यहाँ अभी दूसरे समय वो 40 वाले ग्रुप के समान इसकी विशुद्धि हो जाएगी,
42-79
जैसे इसके परिणाम होंगे, इसके परिणाम 41 जैसे होंगे, यानी अपनी अपनी विशुद्धि बढ़ रही है। परंतु किसी के यहाँ पर दूसरे समय में ये 39 वाले को दूसरे समय में 40 वाले जैसे परिणाम है, किसी के पहले ही समय में ऐसे कहाँ तक ऊपर समानता हो सकती है? तो चार समयों तक, उसको अनुपृष्टि कहा। ये तो गुणस्थानों में चर्चा हुई थी ना, अपूर्वकरण गुणस्थान में भी बात आती है, या दर्शनों के उपशम के काल में भी अपूर्वकरण करण में भी ये बात आती है, और स्थिति बंध के जो अध्यवसाय स्थान होते हैं, विशिष्ट स्थिति बंध के कारणभूत परिणाम, वो भी ऐसे ओवरलैप होते हैं। तो वहाँ ये पूरी अनुपृष्टि रचना समझाई, ये बात यहाँ बताई, ये घोटाला हो रहा है, मगर बीच में जो कुछ डाला ना उन्होंने। ये जो अनुकृष्टि का अर्थ क्या लिया उन्होंने, परिणामों की परस्पर समानता होना, तो ये तो स्थिति बंध के कारण मुझ जो परिणाम है वो, तो कितनी स्थिति बांधते हैं, जगन्य बांधते हैं कि एक समय अधिक बांधते हैं कि और एक समय अधिक बांधते हैं, तो उसमें जो परिणामों की समानता ऊपर नीचे होती है उसको अनुकृष्टि कहते हैं वहां पर भी। और वहां तो कहां तक समानता होती है, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक समानता हो सकती है, ये बात वहां बताई है। यहाँ लिखिए ना कि संसार के योग्य स्थिति बंधा व्यवसाय स्थानादि रूप परिणामों के रहते हुए, यानी उसमें भी ये अनुकृष्टि रचना लगती है, वहां की बात चल रही है।
तो संसार अवस्था में नाना जीव की अपेक्षा देखेंगे तो एक ही स्थिति के बंधन कुछ कारण उसके परिणाम की
असंख्यात लोग होते हैं,
नहीं पर समानता,
हाँ उनमें समानता। यहाँ भी क्या देखा हमने, अधः प्रवृत्त के कारण एक समय के परिणाम कितने, असंख्यात लोग, हर एक समय में असंख्यात लोग, फिर भी ऊपर नीचे कुछ परिणामों की समानता, कितने समयों तक समानता है, तो अंतर्मूर्त तक,
यहाँ पे अंतर्मूर्त और वहाँ पे
पल्ले की असंख्यात, यानी अनुकृष्टि कहाँ कहाँ पाई जाएगी, स्थितिबंध अध्यवसाय स्थानों में भी होगी और यहाँ पर भी होगी, वहाँ पर समानता कितने काल तक पाई जाएगी, तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक। अभी क्लियर हो गया, ये अच्छा हुआ कि शाम को अभी अभी हम पढ़े, अभी अभी दो दिन पहले ही पढ़े, इसलिए वो स्थितिबंध नहीं तो ऐसा लगता नहीं, स्थितिबंध में कैसा लगता होगा। यहाँ लिखा ना जघन्य स्थितिबंध के योग्य परिणामों के सद्भाव में पल्लोपम के असंख्यात भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की अनुवृत्ति वहां देखी जाती है। स्थिति विशेष यानी स्थिति के भेद, स्थिति के भेद अलग अलग कितने हो सकते हैं, तो पल्ले के असंख्यात भाग
प्रमाण,
यानी वही परिणाम से कितने अलग अलग स्थिति बन सकती है, पल्ले के असंख्या पे भाग प्रमाण अलग अलग स्थिति बन सकती है एक ही परिणाम से। जो परिणाम जघन्य स्थिति को बांध रहा है वही परिणाम पल्ले का असंख्यात भाग काल अधिक कितना भी परिणाम स्थिति बांध सकता है। स्थिति के विशेष बताएं, स्थिति के भेद की बात करते हैं। ऐसे ही एक परिणाम यहाँ अधप्रवृत्तकरण के पहले समय में भी हो सकता है, अभी ये 42 में जो ग्रुप में परिणाम है, और वही परिणाम चौथे समय में भी हो सकता है।
यहाँ पे अंतर्मुख काल होगा, वहाँ पे पल्ले का असंख्यात भाग,
हाँ ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। स्थिति विशेष यानी स्थिति के भेद,
तो यहाँ तो हमने जो देखा जो संस्कार अवस्था में जो ओवरलैपिंग होता है वहाँ पे जो कांडक है वो असंख्यात लोक प्रमाण है और पल्ले के असंख्यात में ट्रांसफॉर्मर जो परिणाम है उससे अलग अलग स्थिति बन सकती है। तो उसमें स्थिति की वेरिएशन भी पल्ले के असंख्यात में पांच काल प्रमाण हो जाएगी नहीं,
यहाँ परिणाम तो असंख्यात लोक
है बराबर है और वहाँ पे कांडक का प्रमाण उनमें पल्ले का असंख्यात पापा
वहाँ कोई
पल्ले के असंख्यात में पांच प्रमाण कांडक है उसमें
कांडक नहीं कहते उसको स्थिति के ही वेरिएशन लेना।
तो वहाँ पे जो वो जो है उससे दो समय वाले
देखो यहाँ कैसे लेना यहाँ तो 42 अलग ग्रुप यानी फ्रॉम 121 to 162 ये पहले समय में हो सकता है दूसरे में भी तीसरे में भी चौथे में
अंतर्भूत प्रमाण का
अभी ऐसा ही स्थिति के भेद ले।
अच्छा, वहाँ पे
ये जघन्य स्थिति बंद के कारण बहुत असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम अब ये मिनिमम वाले तो इसको बांधेंगे समझे परंतु ये जो ऊपर वाले परिणाम है असंख्यात लोक का ऊपर जाके वो जघन्य स्थिति को भी बांध सकते हैं इसको भी इसको भी इसको भी कितने स्थितियों तक ये बांध सकते हैं पल्ले के असंख्यात ये स्थिति के भेद लेना।
अच्छा, ये ओवरलैपिंग ऊपर 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 होता था ये हमने खाली दो देखा था इसकी वजह से
ये बहुत समय तक ओवरलैपिंग कितने पल्ले के असंख्यात से भाग प्रमाण स्थिति के भेदों तक चलेगा ये कुछ परिणाम ऐसे हो गए तो ये कितनी भी स्थिति बांध सकते हैं। ये तो दृष्टांत हुआ यहाँ तो अपना विषय तो अधप्रवृत्तकरण का चल रहा है यहाँ कहाँ तक समानता है
अंतर्मूर्त
वो अंतर्मूर्त कैसा है पूरे अधप्रवृत्त कारण के जो अंतर्मूर्त है उसका संख्या तो अभाव ख्याल में बस आगे शंका वह कैसे कहते हैं अधप्रवृत्तकरण के प्रथम समय में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं पुनः दूसरे समय में वे ही परिणाम स्थान अन्य अपूर्व परिणाम स्थानों के साथ विशेष अधिक होते हैं।
तो पहले जो 160 देखा था दूसरे समय में 164 हो गया
164 होते हैं परंतु उसमें वो अभी 39 वाले नहीं रहे
नहीं है
और
तो
कुछ
हाँ
कुछ ओवरलैपिंग है
परिणामों की संख्या
कुछ ओवरलैपिंग है कुछ और नए हो गए वहाँ पर तो विशेष का प्रमाण कितना है तो प्रथम समय के परिणाम स्थानों में अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो एक भाग प्रमाण असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम प्राप्त होते हैं उतना है ये विशेष अधिक का प्रमाण भी उतना ही कहेंगे इस प्रकार इस प्रतिभाग के अनुसार प्रत्येक समय में विशेष अधिक परिणाम स्थान करके अधप्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक ऐसा ही जानना चाहिए विशेषार्थ जिसमें आगे के समयों में होने वाले परिणामों की पिछले समय के परिणामों के साथ समानता दिखलाई जाती है उसका नाम अनुकृष्टि है। यह अनुकृष्टि संसार अवस्था के यानी जहाँ वो उत्सम समय को का कार्य नहीं हो रहा है कोई करण परिणाम नहीं हो रहा है ऑर्डिनरीली कहते संसार अवस्था के परिणामों में भी पाई जाती है और अधप्रवृत्त करण परिणामों में भी पाई जाती है। अंतर इतना है कि संसार अवस्था में इस अनुकृष्टि का अनुकृष्टि लिखा अनुकृष्टि का काल पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण है क्योंकि जघन्य स्थितिबंध के योग्य जो परिणाम होते हैं उनके सद्भाव में पल्लोपम के असंख्यातवे भाग प्रमाण स्थिति विशेषों की उपलब्धि देखी जाती है। ये समझ में आई ना बात जो परिणाम जघन्य स्थितिबंध कर रहे हैं वे ही परिणाम अलग अलग कौन कितनी स्थितियां बांध सकते हैं पल्ले के असंख्यात अभी हमने यहाँ बताया ये जो परिणाम जघन्य स्थिति भी बांध सकता है अधिक स्थिति भी बांध सकता है यानी एक स्थिति के कारणभूत परिणाम असंख्यात लोग और एक विशिष्ट कुछ भी परिणाम ऐसे हो गए वो कितनी अलग अलग स्थितियां बांधते हैं पल्ले के असंख्यात लोग परंतु अधप्रवृत्तकरण में इस अनुकृष्टि का काल अंतर्मूर्त मात्र अवस्थित स्वरूप है इसका नाम याद है किसी को? पंचलब्धि पुस्तक में लिखा है जो अंतर्मूर्त काल तक अवस्थित रहते हैं परिणाम, उसका नाम है। अभी हमने हमारे उदाहरण में कितने लिए, हमने चार समय तक समान रहते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? निर्वर्गणा कांड। क्योंकि यह काल अध प्रवृत्तकरण के काल के संख्यातवे भाग प्रमाण है। हाँ, ये जो कांडक है ना, जहां तक समानता पाई जाती है, हो संख्यात्व, ये जो अंतर्मूर्त मात्र अवस्थित स्वरूप लिखा है ना, यानी अनुकृष्टि का काल कहाँ तक है? अंतर्मूर्त, जो हमने चार समय का मान लिया, उसी को क्या कहते हैं? निर्वर्गणा कांडक कहते हैं। उसके आगे समानता नहीं हुई, वहां तक ही हुई।
काल की समानते वाले परिणाम को निर्वर्गण
नहीं, परिणामों को नहीं, कहाँ तक समान है? जो हम अंदर मूर्त प्रमाण है ना, उस अंतर मूर्त को निर्वर्गणा कांड कहा। कहाँ पर? हाँ, इसी को निर्वर्गणा कांड कहते हैं। और उसी को उसके पहले वाक्य में लिखा था कि अधप्रवृत्तकरण में इस अनुपृष्टि का काल अंतर्मूर्त मात्र अवस्थित स्वरूप है, क्योंकि अंतर्मूर्त का वो संख्यात्व भाव है, वो भी अंतर्मूर्त प्रमाण है। जो हमने चार समय मान लिया है तो वो अंतर्मूर्त छोटा अंतर्मूर्त है, और अधप्रवृत्तकरण काल का बड़ा अंतर्मूर्त है, ये उसके संख्यात्व भाव प्रमाण है। इसी तथ्य को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में जो असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम स्थान होते हैं, परिणामों के अलग अलग स्थान होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, यानी मिनिमम एक नंबर का परिणाम है, उससे दो नंबर का परिणाम, तीन नंबर का परिणाम, वो किस रूप में है? एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से ज्यादा नहीं है, अनंत भाग वृद्धि छस्थान वृद्धि वाले हैं, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, फिर वो असंख्यात भाग वृद्धि, इस तरह से वहां स्थित रहता है। तो इस तरह से वो असंख्यात लोक प्रमाण, उनमें से प्रारंभ के एक खंड प्रमाण, एक खंड कहा ना, यानी जिसको हमने 39 वाला ग्रुप कहा, उसको छोड़कर
बाकी
दूसरे समय में भी अन्य अपूर्व परिणाम स्थानों के साथ वे परिणाम स्थान पाए जाते हैं। हमने चार खंड किए, पहले समय में मान लेते 162 परिणाम अलग अलग है, उसमें एक 39 का ग्रुप, आगे वाला 40 से लेकर 79 तक का 40 का ग्रुप, फिर 80 से 120 तक का 41 का ग्रुप, और
121 से 162
तक का 42 का ग्रुप, ऐसे चार ग्रुप के। दूसरे समय में क्या होगा? वो पहला जो 39 वाला ग्रुप वो नहीं रहेगा, उनकी विशुद्धि बढ़कर आगे वाले ग्रुप जैसे हो जाएगा, यानी वहाँ क्या होगा, 40, 41, 42 और 43 वाला ग्रुप और नया आकर उसमें जुड़ जाएगा, उतनी विशुद्धि वाले आगे के परिणाम उसके साथ हो गए। 162 तक हम रुके थे ना, उसके आगे 42 भिन्न। इस तरह से प्रत्येक समय में पहले वाले का एक खंड वहाँ नहीं रहेगा और एक नया खंड उसमें प्रवेश करेगा। इस प्रकार यह क्रम अध प्रवृत्तकरण के अंतिम समय तक जानना चाहिए। इस विषय का विशेष खुलासा आगे करेंगे, आएगी बात आगे। अब तो इतना देखा है तो आगे तो और आसान है। अब प्रथम समय से लेकर यथाक्रम विशेष अधिक के क्रम से इन परिणाम स्थानों की स्थापना इस प्रकार जाननी चाहिए। यथा अध प्रवृत्तकरण के प्रथम समय में जो परिणाम स्थान होते हैं, उन्हें अंतर्मूर्त काल के जितने समय हैं मात्र उतने खंड प्रमाण करना चाहिए। शंका, इस अंतर्मूर्त का क्या प्रमाण है? अपने काल के संख्यात्रय भाग प्रमाण है। अभी जो हमने चार खंड किए ना, तो 16 समय का वो संख्या तो भाग था, इसलिए चार खंड किए। अरे यहाँ नाम आया, वही निर्वरणा कांडक है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। मैंने तो पढ़ा नहीं था मगर मुझे पहले की याद है। विवक्षित समय के परिणामों का जिस स्थान से आगे अनुपृष्टि का विच्छेद होता है, यानी जिसके आगे अनुपृष्टि नहीं रही, वहां तक ही अनुपृष्टि है, उसके आगे नहीं है, तो कहते हैं विवक्षित समय के परिणामों का जिस स्थान से आगे अनुपृष्टि का विच्छेद होता है। अभी पहले समय में हमने चार खंड किए, वो 42 का जो खंड था वो पहले समय में भी था, दूसरे में भी था, तीसरे में भी था, चौथे में भी था, परंतु पांचवे से आगे नहीं है, वो चौथे तक ही है। वह निर्वर्गणा कांडक कहा जाता है। हाँ, परंतु यहाँ के यहाँ क्योंकि निर्वर्गणा कांडक चार का होगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि दूसरे समय में लेंगे तो वो भी चार समय तक चलेगा। हर एक का अपने एक एक परिणाम चार समय तक चलेगा, वो तो पहले समय के सभी परिणामों की सिमिलैरिटी नहीं हम कर सकते, इसलिए। अब ये खंड परस्पर क्या सदृश होते हैं विसदृश होते हैं, ऐसा पूछने पर सदृश नहीं होते विसदृश ही होते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। हमने उसको देखा ना 39, 40, 41, 42, सदृश नहीं, उसमें परिणाम ज्यादा ज्यादा है आगे, यानी वो अनुभाग की अपेक्षा तो है ही नहीं, क्योंकि उसको स्थान कहें वो तो वेरिएशन है ही है, परंतु उनकी संख्या भी सिमिलर नहीं है। हमने चार एग्जैक्ट चार खंड नहीं किए, बढ़ते हुए परिणाम ले लिए, क्योंकि एक दूसरे को देखते हुए यथाक्रम विशेष अधिक क्रम से ही अवस्थित देखे जाते हैं। ये पूरा ही फिर कल पढ़ेंगे, अभी तो समय हो गया है, पढ़ेंगे क्या? अच्छा, कल रिपीट हो जाएगा। अच्छा, हुआ। यह विशेष विशेष निश्चय, यह विशेष अंतर्मूर्त का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतना है। जैसे चार को चार से भाग देके हमारा एक आया था ना, वो यथायुग होगा वहां पर। पुनः प्रथम खंड को छोड़कर, जो हमारा 39 वाला था ग्रुप, उसको छोड़कर इन्हीं परिणाम स्थानों को दूसरे समय में परिपाटी को उल्लंघन कर स्थापित करना चाहिए। इतनी विशेषता है इस दूसरे समय में असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अपूर्व परिणाम स्थान होते हैं। यानी वो जो हमने देखा था नया ग्रुप वहाँ आके जुड़ जाएगा ना, 43 वाला दूसरे समय में, वो भी कितने हैं तो असंख्यात लोक प्रमाण, जो प्रथम समय के अंतिम खंड के परिणामों से अंतिम मुहूर्त का भाग देने पर जो लब्ध आवे उतने विशेष अधिक होते हैं। जो हमने देखा ना, हमने तो एक क्षय माना था, पहले समय का अंतिम खंड 42 का था, उसमें एक क्षय वाला एक विशेष वाला मिला दो तो 43 हो गए थे, वैसे यहाँ समय उन्हें यहाँ अंतिम खंड रूप से स्थापित करना, यानी दूसरे समय का वो अंतिम खंड होगा 43 वाला। इस प्रकार स्थापित करने पर दूसरे समय में भी अंतर्मूर्त प्रमाण परिणाम खंड प्राप्त होते हैं। खंड खंड की बात, जैसे हमने चार खंड किए, पहले समय में भी चार खंड किए, दूसरे समय में भी चार खंड किए, इसी प्रकार तृतीय आदि समयों में भी परिणाम स्थानों की रचना अध: प्रवृत्तकरण के अंतिम समय के प्राप्त होने तक क्रम से करनी चाहिए। इसका विशेषार्थ देखेंगे कल। जावानी के ज्ञान से सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देखहु।
नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वचनम, नमो लोहे सप्रसावनम। नमो ओरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वचनम, नमो लोहे सप्रसावनम। నమోర్యంతానం నమో సిద్ధానం నమో అనేనం నమో వజ్రానం నమో లోయ సర్వస్థానం నమోర్యంతానం నమో సిద్ధానం నమో అనేనం నమో వజ్రానం నమో లోయ సర్వస్థానం.